लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में अपने उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि जब तक समाज में और लोगों के बीच बहिष्करण और असमानता की परिस्थिति को नहीं बदला जाता, हिंसा को खत्म करना अपने में संभव नहीं है। आज के आर्थिक तंत्र अत्यधिक खपत को बढ़ावा देते हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि बेलगाम उपभोक्तावाद असमानता के साथ मिलकर सामाजिक ताने बाने के लिए दोगुना हानिकर साबित होता है। असमानता अंततः हिंसा को जन्म देती है, जहां हम हथियारों पर आश्रय को पाते हैं और जिसके कारण समस्या का समाधान नहीं होता और न ही कभी समाधान होगा। यह केवल उनके लिए झूठी आशा प्रदान करती है जो अपनी सुरक्षा बढ़ाने हेतु चिल्लाते हैं। यद्यपि हम आज हथियारों और उनके द्वारा हिंसा को देख सकते हैं, वे समस्याओं का निदान करने के बदले नई समस्याओं और घातक लड़ाइयों को जन्म देते हैं। कुछ लोग अपनी समस्याओं के लिए गरीब और गरीब देशों को दोष देने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अनुचित सामान्यीकरण में लिप्त वे इस बात का दावा करते हैं कि इसका समाधान एक शिक्षा में है जो लोगों को शांत करेगा, उन्हें नियंत्रण में रखेगा और अहिंसक बनाएगा। यह सब हाशिए पर पड़े लोगों के लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है, जब वे देश में, सरकारों में, व्यापार और संस्थाओं में भ्रष्टाचार की जड़ों को गहराई में जाता पाते हैं, चाहे उनके नेताओं की राजनीति विचारधारा कुछ भी क्यों ना हो। श्रोताओं, हम अपने जीवन के द्वारा उन क्षणों में भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं जब हम अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। बहुत बार ये सारी चीजें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के मार्ग में वास्तविक आक्रमण के रूप या ख्रिस्तियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप में एक नई प्रताड़ना बन जाती है। कुछ देशों में ये घृणा और हिंसा के खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। बहुत से स्थानों में हम उदासीनता और सापेक्षवाद की समस्या को अधिक प्रसारित होता पाते हैं, जो निराशा और विचारधाराओं की समस्या से जुड़ी हुई है, जो किसी भी चीज के बारे में एक प्रतिक्रिया स्वरूप उभर कर आती है जिसे वह तानाशाह के रूप में देखती है। यह न केवल एक संस्कृति को हानि पहुंचाती, अपितु इसके द्वारा पूर्ण रूपेण एक समाज का ताना बाना अपने में नष्ट होता है। हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है कि कैसे एक संस्कृति में जहां हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में अपनी सच्चाई को वहन करने की चाह रखता है, नागरिकों के लिए एक सामान्य योजना तैयार करना मुश्किल हो जाता है, जो व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से उन्हें परे ले जाता हो। श्रोताओ, प्रचलित संस्कृति में दिखावा, तत्काल, दृश्यमान, त्वरित, सतही और अंतरिम बातों को प्राथमिकता दी जाती है। वह जो सत्य है दिखावे की चीजों से अलग होती है। कई देशों में वैश्वीकरण का अर्थ है उनकी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को तेजी से बिगाड़ना और अन्य संस्कृतियों के लिए अपने को खोलना, जो आर्थिक रूप में उन्नत हैं लेकिन उनकी नैतिकता अपने में कमजोर है। इस तथ्य के संबंध में कई महादेश के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों ने धर्म सभा के दौरान अपने विचार स्वरूप व्यक्त किए हैं। अफ्रीका के धर्माध्यक्षों ने उदाहरण के लिए सोलिची तुदो रे 46 में इस बात को बहुत सालों पहले इंगित किया कि अफ्रीकी देशों को मशीन के पुर्जे एक विशाल पहिए पर चक्रदंत बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। यह बहुधा सामाजिक संचार माध्यमों के क्षेत्र में सही होता है, जो ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में केंद्रों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो देशों की प्राथमिकताओं और समस्याओं पर हमेशा उचित ध्यान नहीं देते हैं या उनकी सांस्कृतिक बनावट का उचित सम्मान नहीं करते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर एशिया के धर्माध्यक्षकों ने उन बातों को रेखांकित किया जहां बाहरी चीजों से वे अपने को प्रभावित होता पाते हैं। संचार माध्यमों के अत्यधिक प्रभाव के कारण लोगों में एक तरह से एक अलग तरह के व्यवहार देखने को मिल रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मीडिया और मनोरंजन उद्योगों के नकारात्मक पहलू पारंपरिक मूल्यों और विशेष रूप से विवाह की पवित्रता और परिवार की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। श्रोताओ, बहुत सारे लोगों का ख्रिस्तीय विश्वास नए धार्मिक आंदोलनों के कारण चुनौती से भरा दिखाई देता है। इसमें से कुछ कट्टरवाद की ओर अभिमुख होते हैं, जबकि अन्य ईश्वर के बिना आध्यात्मिकता को प्रस्तावित करते हैं। वहीं दूसरी ओर इसका प्रभाव यह होता है कि मानव एक भौतिकवादी, उपभोक्तावादी और व्यक्तिवादी समाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, लेकिन यह भी गरीबी में रहने वाले लोगों की कमजोरियों का शोषण करने का एक माध्यम बनता है। समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग जो मानवीय पीड़ा के मध्य अपने जरूरतों की पूर्ति करते हैं, जितना जल्दी हो सके अपने आवश्यकताओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं। ये धार्मिक आंदोलनें एक निश्चित चतुराई के बिना ही मुख्य रूप से व्यक्तिवाद, संस्कृति के भीतर धर्मनिरपेक्षतावादी तर्क द्वारा छोड़े गए एक शून्य को भरने के लिए आगे आते हैं। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि यदि हमारे कुछ बपतिस्मा प्राप्त लोग अपने में कलीसिया से संयुक्त होने का एहसास नहीं करते हैं, तो इसका कारण कुछ कलीसियाई निश्चित संरचनाएं और पल्ली समुदायों के द्वारा कई अवसरों पर लोगों का स्वागत नहीं किया जाना है या समस्याओं के समाधान में नौकरशाही तरीके को अपनाना है, चाहे वह लोगों के जीवन का साधारण या जटिल समस्या ही क्यों ना हो। बहुत से स्थानों में हम प्रेरितिक पहुंच के बदले एक तरह से आधिकारिक व्यवहार को पाते हैं, मानो यह सुसमाचार प्रचार का हिस्सा न होकर संस्कारों का एकग्रचित अनुष्ठान हो। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
गीत हम गाते रहें, गुणगान उस प्रभु के। उसके महान गाता वे हम सब के
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शरणार्थियों एवं आप्रवासियों की शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कार्डिनल माइकल चर्नी ने शरणार्थियों एवं आप्रवासियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने हेतु मिलकर काम करने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रोम स्थित परमधम पीठ ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में किया गया था। सोमवार को सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्डिनल चर्नी ने कहा, यह शैक्षणिक साथ ही गैर सरकारी संगठन के नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों एवं मानवीय सहायता संगठनों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा न्याय, सहानुभूति एवं मानव प्रतिष्ठा के मौलिक कार्यों को प्राप्त किया जा सकता है। सम्मेलन की विषय वस्तु थी शरणार्थी एवं आप्रवासी शिक्षा हेतु पहल, आगे बढ़ते हुए, गहरा जाते हुए, एक साथ। रोम के परमधम पीठ ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में आयोजित सम्मेलन में कार्डिनल चर्नी ने एक साथ के विचार पर जोर दिया तथा स्वीकार किया कि अप्रवासियों एवं शरणार्थियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले वर्तमान के संकट के समाधान के लिए एकल दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है। बहरहाल कार्तिक सामाजिक शिक्षा एक ढांचा प्रदान करती है जो प्रतिभागियों को शोध करने, विचारों को साझा करने और एक साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आगे बढ़ने के विचार पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्डिनल ने अप्रवासियों एवं शरणार्थियों की शिक्षा के लिए चुनौतियों की जांच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों में शैक्षणिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा कैथोलिक संगठनों को सुझाव दिया कि वे शरणार्थियों एवं अप्रवासियों के लिए दूरस्थ शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के साथ इसके लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने गौर किया कि काम का अवसर, जीविका उपार्जन और आत्मनिर्भर बनना शरणार्थियों के जीवन निर्माण के लिए सबसे प्रभावशाली रास्ते हैं। यह उच्च स्तरीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जहां शरणार्थियों और उनके मेजबान समुदाय के अनुभवों के बीच अधिक विसंगतियां दिखाई देती हैं। कार्डिनल चर्नी ने शैक्षणिक योग्यता की आपसी पहचान, प्रेरित एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स और अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर विषय शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्डिनल ने अंत में कहा कि सरकार, व्यवसायी समुदाय और कलीसिया को शरणार्थियों एवं आप्रवासियों के लिए सार्थक शैक्षणिक अवसरों तक पहुंच प्रदान करने हेतु अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं कि वे एक स्पष्ट मिशन और उदार मनोभाव के साथ मिलकर काम करें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 66वें सत्र में भाग लेते हुए महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलाघर ने परमाणु हथियार के प्रयोग का विरोध किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कैंसर से लड़ने एवं जीवन के अन्य आयामों को बेहतर करने हेतु कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। 66वें सत्र को संबोधित करते हुए वैटिकन विदेश सचिव पॉल रिचर्ड गलाघर ने अपने संबोधन की शुरुआत संत पापा फ्रांसिस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए की। महाधर्मदश कलाघर ने यूक्रेन में परमाणु सामग्री की सुरक्षा एवं एक परमाणु आपदा से रक्षा हेतु मदद के अथक प्रयास के लिए परमधम पीठ की ओर से महानिदेशक की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जब हम भयानक संघर्ष एवं अशांति को देख रहे हैं और यूक्रेन में युद्ध निरंतर बढ़ रहा है, जब राजनयिक समाधान के लिए शब्द और कार्य कम हो जा रहे हैं, तब हमें संवाद के लिए प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत अनिश्चितता का समय है जिसमें परमाणु हथियार का भय हमें भयभीत करने के लिए वापस ला रहा है। उन्होंने बतलाया कि परमधम पीठ वार्ता और समझौता के अथक साधन द्वारा सभी राष्ट्रों से हथियारों को चुप करने और संघर्ष के कारणों को समाप्त करने की अपील करता है। महाधर्मदश कलाघर ने आगे कहा कि परमधम पीठ को कोई संदेह नहीं है कि परमाणु हथियार मुक्त विश्व आवश्यक है और संभव भी है। उन्होंने कहा कि परमधम पीठ ने परमाणु हथियारों के निषेध हेतु संधि पर हस्ताक्षर किया है और पुष्टि भी दी है कि दुनिया को पूरी तरह परमाणु हथियार से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि महाधर्मदश ने खेद प्रकट किया कि परमाणु निरस्त्रीकरण एजेंडा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिसके कारण हम आशा खो सकते हैं, लेकिन हमें असफलताओं से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने संबोधन में महाधर्मदश ने जलवायु परिवर्तन एवं कोविड आपातकाल स्थिति के परिणामों की ओर ध्यान खींचा, जिसने पर्यावरणीय, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डाला तथा हमारे मानव जाति में सबसे गरीब और कमजोर लोगों के लिए बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न की। इसे ध्यान में रखते हुए परमधम पीठ भाईचारे एवं मानवीय तथा पर्यावरण के बीच संबंध के आधार पर विकास और स्थिरता के मॉडल का समर्थन करता है। वैटिकन विदेश सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी विकासशील देशों को कैंसर की चिकित्सा, अधिक खाद्यान्न उत्पन्न और दुर्लभ जल आपूर्ति का प्रबंध करने हेतु परमाणु तकनीकी का प्रयोग करना सिखाती है। इस प्रकार समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने और ईश्वर की सृष्टि की देखभाल करने हेतु एक विशेष भूमिका अदा करती है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि परमधम पीठ एजेंसी के उस काम की विशेष रूप से सराहना करता है जिसके द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों को व्यापक कैंसर नियंत्रण रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि समय पर सभी रोगियों को रेडियोथेरेपी और परमाणु चिकित्सा तक पहुंच प्राप्त हो सके। उत्तर पूर्वी भारत के कार्तिक धर्मदर्शियों ने अपने क्षेत्र में ईश्वर की सृष्टि की देखभाल हेतु जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संकल्प लिया है। संकल्प असम के गुवाहाटी स्थित सामाजिक सेवा केंद्र के जुबली मेमोरियल हॉल में वार्षिक प्रांतीय प्रेरित सम्मेलन के दौरान लिया गया। 12 से 15 सितंबर को आयोजित सेमिनार की विषय वस्तु थी उत्तर पूर्वी भारत में जलवायु परिवर्तन तथा ईश्वर की सृष्टि की देखभाल। उत्तर पूर्वी भारत के प्रांतीय धर्मदर्श सम्मेलन के महासचिव धर्मदर्श जेम्स थोपिल ने कहा, देश का एक हिस्सा भयंकर सूखा का सामना कर रहा है और दूसरा हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा है। यह हमारे लालच के कारण और हमने जिस प्रकार का चुनाव किया है उसके कारण हो रहा है। सम्मेलन को महामारी के कारण 2 साल के बाद आयोजित किया गया था जिसमें 15 धर्म प्रांतों के करीब 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। धर्माध्यक्षों की कुल संख्या 13 थी। संत पापा फ्रांसिस के शब्दों का हवाला देते हुए उन्होंने प्रतिभागियों से अपील करते हुए कहा कि जब हम सृष्टि की रक्षा करने का संकल्प ले रहे हैं, आइए हम ईश्वर की योजना के संरक्षक बने जो प्रकृति में अंकित है, एक दूसरे के और पर्यावरण के संरक्षक बने। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।